हल्बेली परिक्रमा हुई, उसमें स्त्री पुरुष हाथ उठा सकते। जब हाथ उठाते कीर्तन करते थे केवल हाथ ही हाथ
दिखता,
और जब नहीं तो केवल भेड़ बकरी, किसी को ऊंट, किसी को कुछ, किसी को पेड़ पौधों से भी जन्म मिले हैं। हृदय में अंतर में आत्मा एक ही समान है, तो हम लोग पूरे करते हैं। सबके अंदर में कुछ प्रेम है, किंतु यह प्रेम कुछ विकृत रूप में है। ऐसा कौन है जो किसी की सेवा नहीं करता? ऐसा कोई जगत में है? कोई भी नहीं है। कोई प्राणी भी नहीं है जो किसी न किसी रूप में किसी से प्रेम और सेवा करता है, किंतु वह प्रेम विकृत है। वो अपने शरीर से भी प्रेम करते हैं, किंतु यह शरीर भी नष्ट हो जाता है। हम इस विषय को नहीं जानते ये प्रेम सीधा किसके प्रति करनी चाहिए। हम भगवान को भूल करते इस जगत में आए। अनंत काल से जब से पहली सृष्टि हुई इसका कोई हिसाब लेखा जोखा है, तभी से हम हटके हुए हैं। भगवान को भूलने से ही हम ये कोटि कोटि तरह तरह की योनियों में निकृष्ट और उत्तम योनि, यहां तक कि ब्रह्मा तक पहुंच जाते हैं। कभी इंद्र बन जाते हैं, कभी पूछ बन जाते हैं। आज भगवान की बड़ी कृपा है कि हम लोग मनुष्य का चोला पहन करके यहाँ पर आए हैं, कुछ समझ रहे हैं, कुछ शास्त्र संग भी कर रहे हैं। कोई ये कह सकता है कि अर्थ के द्वारा हम सुखी हो सकते हैं? नेपोलियन बोनापार्ट से देखो, सोने की लंका वाले रावण से देख लो, और सब प्रकार का पद पाने वाला हिरण्यकश्यप से देख लो। दिन में मरू नहीं, रात में नहीं मरू, किसी के हाथ से नहीं मरू, किसी मनुष्य से या किसी के भी जल तब से नहीं मरू। और आगाज संपत्ति का मालिक इंद्र जी की सेवा कर रहे हैं, वरुण जी की सेवा कर रहे हैं, देवता लोग उनकी सेवा कर रहे हैं, और वो कि सुखी हुआ नहीं सुखी हुआ? भगवान को बोल करके कोई नहीं सुखी हो सकता। ये इसलिए परिक्रमा हम लोग बुलाते हैं, कहते हैं कि तुम आओ खाने पीने की हम सब व्यवस्था सारी व्यवस्था करेंगे। तीन महीने तक चावल भिक्षा करते हैं हमारे सफल ब्रह्मचारी साहब, परिक्रमा 1-1.5 हजार मन चावल भिक्षा से आता है। सब्जी आती है, तेल आते हैं, घी आता है, सब कुछ आता है। कभी और व्यवस्थाएं है ना, 15,000-20,000 आदमी की व्यवस्था करना सहज नहीं है। इसमें विदेश से लोग आते हैं, यहाँ से घनी मानी कुछ हैं। ये दिल्ली वाले भी बहुत से ऐसे उदार आदमी हैं जो कुछ अधिक देते हैं, 40-50-50 हजार लोग देते हैं, इसी ये परिक्रमा चलती है। बंगाल में जिनके यहाँ से ये सब लाते हैं उनसे एक पैसा की जो दे देते हैं, बड़ी भारी परिक्रमा की व्यवस्था करते हैं। इसलिए वो लोग देखते हैं और श्रद्धा को लोग देते हैं, और इसलिए केवल इसीलिए इसमें जीव का कल्याण है। भूला भटका जीव भगवान को स्मरण करके, भगवान का कीर्तन करके इस जगत में यदि कोई कुछ से भी जैसे भी तैसे होगा, वृंदावन धाम में, नौतीन धाम में, जगन्नाथपुरी में, अयोध्या में भूले भटक करके भी पहुंच जाए, भगवान का नाम कीर्तन तक जरूर ना होगा, ये कानून में पड़े भले ही न कर सके तो भी वो काम करेगा। एक आदमी मान लो कि कोई बीमारी का मरीज है और वो बेहोश हो गया और उसको इंजेक्शन दे दिया, तो अपना काम करेगा कि नहीं करेगा? मुल्क भी अपना काम करता है। एक आदमी को सांप काट दिया, वो मरी गया, फिर मुख से आ गया, तब मंत्र कर दिया, बस जब उठा लिया। तो ये मंत्र मणि औषधि जिस प्रकार से नहीं जानने पर भी काम करती है, इस तरह से भगवान का नाम, भगवान की कथा खुल खुल करके भी जान बुझ करके नहीं हो, अनजान में भी यदि वहां चला जाए और काम में भगवान का नाम पड़ गया और वो भगवान का नाम कर दिया तो समझो जैसे उसका जीवन सुलट जाएगा, भक्ति का बीज उसमें आ गया, समझो और ना समझो। ऊपर से देखने पर पाप करने वाला भी व्यक्ति उसका पाप सब ध्वंस हो जाता है उस एक नाम के करने से। अजामी सदाचारी ब्राह्मण और वो क्या किया, अपने पिताजी के लिए हवन करने के लिए जंगल से लकड़ी बटोरने के लिए गया, इकट्ठा करने के लिए। और वहां एक बेटा को एक दूसरे नीच जाति की सुद्रानी को एक शराब पीकर और उसे क्या दुराचार करते हुए देखा, कंट्रोल नहीं कर सका अपने मन को। एक ब्राह्मण गायत्री मंत्र करने वाला, माता पिता की सेवा करने वाला भी अपने मन को कंट्रोल में नहीं कर सका। बड़े बड़े ब्रह्मा और देवर्षि लोग भी मन को कंट्रोल में नहीं कर पाते, नहीं कर पाया। जितना वो सोचता उसको दबाने की उतना वो आग बढ़ती जाती काम की, छोड़ दिया। इसके बाद में वो बेशक अपना घर का सारा सामान चोरी से देकर के और उसी के साथ में चला गया और वो विष्णु से जैसा व्यवहार करने लगा। पैसा आए कहां से उसको देने के लिए, चोरी डकैती बदमाशी मर्डर करके भी रुपया पैसा मांगा, कितना दुष्ट और दुराचारी हो गया। अंत में उसे सात संतान मिली, आठवां संतान जब वो एक लड़का पैदा हुआ उसका नाम नारायण रख दिया। कैसे रख दिया, उस संस्कार वर्ष हिंदू जाति में ऐसा होता था, भगवान का नाम आदमी रख दिया। एक वो नारायण नाम रखने के साथ ही साथ उसका भगवान नाम हो गया, किंतु उसका कितना फल हुआ वो नहीं समझ सका। समझा था मृत्यु गए हम रोज बुलाता नारायण बेटा आ जा नारायण नारायण, और उसको नारायण कहता है चुंबन करता उसका मुंह, अब स्नेह करता उसको, सब प्रकार से स्नान इत्यादि कराता और नारायण नारायण तो ये क्या हुआ, उसका भक्ति का अभ्यास हो गया। और जब मृत्यु का समय आया तो डर के मारे देखा जूतों को और देखकर के डर के मारे नारायण नारायण नाम से मुख से अपने बेटे का निकाला है। किंतु हुआ क्या, जम के दूत आए तो उसके प्राण को निकालने लगे शरीर से, और उस समय भगवान के दूत आए ना रा यम चार अक्षर, ये भगवान के दूत वहां से निकाले और उनको मना कहिए तुम इसको कहां ले जा, तो जम के पास में इसको दंड देने के लिए, क्यों इससे बड़ा भारी दुराचार था। ब्राह्मण होता कि अपनी पत्नी को छोड़ दिया, बेटे को छोड़ दिया, बेटियों को छोड़ दिया और एक वेश्या के साथ में जाकर दुराचार किया, कितने लोगों को मारा है मर्डर किया है, कि बड़ा भारी जघन्य पापी है, इसको हम दंड देंगे। उन्होंने कहा कि तुमको जात ज्ञान नहीं है, कुछ भी ज्ञान नहीं, किसने नारायण नाम हरि नाम कृष्ण नाम उच्चारण कर दिया, राम नाम उच्चारण कर दिया, उसके भूत भविष्य और वर्तमान जितने भी पाप हैं सब खत्म हो गए, इधर तुम इसको नहीं ले जाते। उन्होंने कहा कि ये नारायण का नाम नहीं कि आपने बेटे का नाम किया, हरि नारायण नाम है ना, ये आभास भगवान का नाम हो गया, शुद्ध नाम तो नहीं है किंतु आभास हो गया, इसे इसके सारे पाप थे, और शुद्ध नाम करता तो इसको भगवान का प्रेम इसको मिल जाए। अंत में उन्हें मार करके फरा दिया विष्णु के रूप, और ये सब वो सुनता रहा, प्राण तो उसके शरीर से गए नहीं, सुनता रहा। अब उनको गुरु मान लिया कि हमने अपने बेटे के लिए नारायण नाम किया और मैं मृत्यु से पार हो गया और भगवान के विष्णु के दूतों को दर्शन किया, उनके चरणों को छूना चाहा, हम तब ध्यान हो गए। इसके बाद में वहां से उठ करके गया, घर बार सब छोड़ दिया, बेटिया को भी छोड़ दिया, बेटों को भी छोड़ दिया, पुराने वाले थे उनको भी छोड़ दिया, और कहां गया हरिद्वार में, हरि का द्वार में गया, वहां गंगा नदी में स्नान करके और वही जो उनसे नारायण प्राप्त हुआ था नाम, अब उसी नाम को जबते जबते उसके सारे और जो संस्कार हुए थे वो सभी पूर्व गए, उपस्थित होकर उसको गए, उनको मालूम नहीं था कितना दुराचार। इसे भगवान का नाम करने वाला ऊपर से दुराचारी पड़ता है, दुराचारी नहीं पड़ता है, बंद करो भाई दुराचार का नहीं पड़ता है, उसकी निंदा मत करो, उसके साथ सारे पाप जल चुके हैं, तुमको दिखाई नहीं पड़ता, तुम्हारी आंख अंधी है, तुमको भी आत्मा का विचार नहीं आता। इसे भगवान का नाम अभी चेक सुदुराचारो भजते माम अनंतकाल। उसको शादी मानो 24 मिनट भी उसके सब पाप और सदाचार संपन्न हो जाएगा, भगवान का आनंद भक्त हो जाएगा। इन्हें वो बच्चे तो तुम्हारी देखने की दृष्टि नहीं आई है, इसलिए यदि कोई साधु महात्मा या गृहस्थ भक्त भगवान का नाम करता है उसके सारे पाप चलेंगे और सब निश्चित कल्याण होगा। ये तो अशुद्ध नाम करने से हुआ, अशुद्ध नाम करेगा तो कल्याण नहीं मिलेगा। इसलिए हमारा जन्म का, हमारे जन्म की सफलता कहां है? धन कमाने में नहीं, उसमें सहायता नहीं कर सकता, पॉलिटिक्स में नहीं है, राजनीति में नहीं है। घर गृहस्थी अच्छी तरह से कर लिया, वेदों में शास्त्रों में ये कहा गया, वेदांत सूत्र में आप माता पिता की सेवा करते रहे, अपने स्त्री के प्रति जो व्यवहार होता है वो करते रहे, पिता के प्रति जो सेवा की भावनाएं करते हैं, संसारी उपकार है उसको करते रहे और भगवान का भजन नहीं करे तो फिर भी नरक में जाना पड़ेगा। क्यों? भगवान माता पिता के माता पिता के माता पिता, वे पति के पति के पति के भी पति, बंधु के बंधु के बंधु के भी मूल बंधु है कृष्ण ही है। इसलिए कृष्ण का जो भजन नहीं करते चारों वर्णाश्रम में यदि कृष्ण नहीं गजे स्वर्म करते और बंगला में इतने के श्राम इतनी शानदार है। चारों वर्णाश्रमी लोग अपने अपने धर्म का पालन करें, कोई संसार को छोड़ करके दंड लेकर के और शिवोहम शिवोहम या ब्रह्माष्टमी ब्रह्माष्टमी ये कहे तब तब असी कहे मैं ही वही ब्रह्मा हूं, सब कुछ करता रहे तभी नर्क में जाना पड़ेगा, जरूर जाना पड़ेगा। और दुराचारी को करके भी गृहस्थ में रह करके भी यदि भगवान का नाम करता है कुछ नाम करता है तो उसने सब जन्म सफल कर दिया। संसार में भगवान ने हमको इसीलिए भेजा कि हम भूले भटके हैं, हमारा नाम करे, हमारे धाम में जाए, किसी प्रकार से ठाकुर जी की सेवा हो जाए, बस इसने हमारे एक बार समझो जब खूब सफलतापूर्वक हम संसार को चला रहे हैं, स्त्री पुत्र परिवार का पालन कर रहे हैं, यह हो गया धर्म, ऐसा मत समझो ये धर्म सफलता तब होगा जब विवाह कराते हुए भी पांडव जैसा के सब द्रौपदी जैसे नारी बनो, पांचों पांडव जैसे भक्त बनो, गोपियों जैसे गृहस्थी का काम करो, प्रहलाद महाराज जैसा गृहस्थ हो, अम्बरीश जैसा गृहस्थ बनो, तब तो ये ठीक है। और गृहस्थी करते हुए भी भगवान का भजन स्मरण नहीं करते हैं, जीवन के निर्वाह में ऐसे लग गए और संसार में फंस गए कि वही बेकार का हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आजकल टीवी और कैंसर घर घर में ढूंढ करके प्रवेश करके छोटी छोटी लड़कियां 8-10-12 वर्ष की लड़कियां भी टीवी देखने लगती और देखती क्या है, जो गंदे विचार होते हैं जगत में इधर उधर में हो रहे हैं वो समझती है कि हम लव मैरिज कर रहे हैं और सुखी हो जाएंगे। छोटी छोटी बच्चियां भी टीवी होता है और इसमें सब देखती है, देखकर के क्या होता है वो किसी से प्रेम करने लगती है। जब वो याद रखो छोटी बच्चियों के लिए भी कह रहे हैं कभी खबरदार बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड मत करो, उनका जीवन बर्बाद होता है जीवन भर के लिए। माता पिता जहां देख सुन करके शादी करते हैं वहां रह करके और भगवान का भजन करके लिए सारा जीवन मिलजुल करके चलो, ऐसा सोचा। ऐसा नहीं जो लड़कियां टीवी और देख करके और किसी से अभी छोटी अभी 12-14-15 वर्ष की लड़कियां हैं वो भी ऐसा विदेश हो जैसा करने लगे, माता पिता का कोई अंकुश उनके ऊपर में होता ही नहीं, मानती नहीं है। इसलिए ये सब चीजें मिल रही सरकार ना तो माता पिता की सेवा होनी चाहिए, सास ससुर के प्रति की नजर और भगवान के ऐसा तो ठीक है। अंकुश रही सदाचार रही यदि व्यक्ति रहेगा तो भगवान में कैसे जाएगा, उसकी रुचि कैसे जाएगी। इसलिए इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए हमारा उद्देश्य जीवन का ये होना चाहिए हम भगवान का भजन करके इस जब जीवन से हम इस माया से जब संसार से हम उठे हो जाए। संसार को देखा इसमें बहुत से लोग हैं 50 वर्ष के कोई 60 वर्ष के कोई 70 वर्ष के हैं, कोई 80 वर्ष के भी होंगे, बोल गया क्या संसार में देखा, जीवन में पूरा हो गया अरमान, करोड़ों की संपत्ति है, अरमान पूरा हुआ नहीं हुआ? जितने पिट होते जाएंगे इंद्रियां दुर्बल होती जाएंगी और अंत में कुछ कर नहीं सकेंगे, मन ही मन में वो करेंगे। भाइयों सचेत होकर के चलना, भक्ति बड़ी सहज वृत्ति है। अभी नॉर्थ में मैं गया था, वहां पर एक जगह एक प्रसंग आया भक्ति का। क्या प्रसंग आया? रामचंद्र जी वन में भ्रमण करते करते पिता का आदेश पालन करने के लिए लक्ष्मण और सीता को लेकर के बहुत से लोगों में गए, विशेष करके गंगा को पार करके प्रयाग में आए और द्वार दृष्टि से मिले, चित्रकूट में गए, भरत जी से भेंट हुई, भेंट होने के बाद में वो और इधर बंगाल तक चले गए। वहां एक स्थान है बहुत ही रमणीय, हम लोग परिक्रमा में वहां पर जाते हैं, तो वहां पर लक्ष्मण जी ने गंगा के तट पर बड़ी सुंदर एक कुटी बनाई, जैसे पंचवटी है आप लोग देखे होंगे गोदावरी के तट पर, वैसे बहुत रमणीय स्थान है, आम के बगीचों से भरा हुआ, कोकिल सब समय कुकुह करती रहती है और सब समय हरियाली छाई रहती है, बरगद का एक विशाल पेड़ था, उसी के अंदर में लक्ष्मण जी ने एक कुटी बनाई, राम और सीता लक्ष्मण जी रहने लगे। एक दिन की बात है कि लक्ष्मण जी कहीं फल फूल लाने गए थे और सीता जी वहां पर बैठी थी, राम राम ने सीता जी की तरफ में देख करके कुछ मुस्कुरा दिया। सीता जी ने राम से पूछा, प्रियतम हंसने की कोई बात नहीं थी, मुस्कुराने की बात नहीं, आपने मेरी तरफ में देखा और मुस्कुरा दिया, इसका तात्पर्य देखते हैं किस लिए? तो उन्होंने कहा उत्तर दिया, देखो दो बातें हैं, मैं अभी चलूंगा अयोध्या में लौटूंगा 14 वर्ष के बाद, कुछ दिन हम लोग रहेंगे और उस समय में तुमको कोई एक बिना काम का ही काम, बिना किसी अपराध के ही, बिना कोई दोष के तुमको घर से निकाल दूंगा, तुम बल में चली जाएगी, निकाल देंगे लक्ष्मण को कह करके, और तुमको वाल्मीकि जी के आश्रम तक ले जाएंगे और उस समय तुम हमारे बिना में रोटी रोटी एकदम बेसुध हो जाएगी, उस समय वाल्मीकि जी आएंगे और अपनी बेटी बना करके अपने आश्रम में पास में स्त्रियों के कुटियों में तुमको रख देंगे, वही बस तुमको दो लड़के हैं, मैं तुम्हारे दिन में अयोध्या में रहूंगा किंतु चैन से देखा और उसमें मैं तुम्हारी मूर्ति की पूजा करूंगा घर में रह करके। तो हुआ ऐसा ही, कैसे हुआ? जो रामचंद्र जी वहां से लौटे वन से, राज्याभिषेक हुआ भरत जी ने, भरत जी को उन्होंने उनसे राज्य लेकर के और वहां पर राजा बने, 14,000 वर्ष तक राज्य किया, 11,000 वर्ष। इसके बाद में एक दिन उनके खौफिया पुलिस ने, सीआईडी ने उनसे काम में आकर के कहा कि प्रभो प्रजाओं में कुछ कानाफूसी चल रही है, सीता जी रावण के यहां कितने महीने रही और आपने उनको अंगीकार कर लिया, आज एक भोगी अपने स्त्री को 2 लाख देकर के घर से निकाल दिया, मैं राम नहीं हूं, तो अभी रात हो गई, अभी 8 बजे तक कहां थी, मैं तुमको नहीं रहा, मैं राम नहीं हूं, और उनको घर से निकाल दिया, 2 लाख सीट पर लगा दी। ऐसे ही कनक खुशी चलते राम ने सोचा ठीक कि हमारे ऊपर में कुछ कलंक आ रहा है, इसको दूर करना चाहिए। यह भगवान की लीला है। इसके बाद में लक्ष्मण जी को बुला करके कहा, जैसे सीता जी से कहना जो आपकी इच्छा थी, जो जहां पर पहले वनवास के समय में ऋषि पत्नी आती हैं उनको कपड़े लत्ते अलंकार देंगे, तो आप कपड़ा लत्ता अलंकार लेकर के चलिए, कल हम करेंगे। इस तरह से बहाना बना करके ले गए। जबकि वाल्मीकि ऋषि के आश्रम के पास में पहुंचे गंगा के तट पर, उस पार में लक्ष्मण जी ने कहा, भाभी एक कठिन राम की बात को आपसे बतला रहा हूं। रामचंद्र जी ने आपको सदा के लिए छोड़ दिया है, अब आपको मैं यही छोड़ करके मुझे लौटना है। यह सुनते ही बेहोश हो गए। यदि छोड़ना चाहे तो लंका में छोड़ देते, यहां क्यों छोड़े। मूर्खित हो जाने के बाद में लक्ष्मण रोते रोते लौट गए अयोध्या। उनको रोता हुआ इस प्रकार से लेकर के मूर्खित हो गई वाल्मीकि जी का आश्रम पासी में किसी लड़के ने बतलाया, जो सीता जी कोई बड़ी सुंदरी महिला वो वहां पर रो रही है, और रो करके वो वाल्मीकि जी पहुंचे अपने शिष्यों को लेकर, पानी उन्हीं का छिटा दिया। बहुत देर के बाद में कुछ होश आया, बेटी तुम ऐसी क्यों करते हो, मैं जानता हूं सब कुछ, तू मेरी बेटी अब है, चलो हमारे आश्रम में, मैं तुम्हें बेटी की तरह, मैं सब कुछ जानता हूं, कहने की कोई जरूरत नहीं है। आश्रम में लगे कुछ दिनों के बाद तुम वहीं पर बेटे दो हुए, लोग कुछ ना रखा गया। अब सीता जी का तो इस प्रकार से समय कटता, अपने बच्चों का पाल पोषण करती, बड़े बड़े हो गए, उनको धनुष्या इत्यादि सब सिखलाती, और वाल्मीकि जी भी इनको स्नेह करते, हरी कथा भगवान की कथाएं सब सुनाते, और इसी बीच में उन्होंने रामायण की रचना की और बच्चों को भी सिखलाया। इधर रामचंद्र जी की इस बात में इनका तो समय अब कट रहा है, कैसे अपने बच्चों के साथ में है, वाल्मीकि जी के पिता के रूप में उनको कथाएं सुनाते हैं, उनका दुख बांट लेते हैं। रामचंद्र जी का दुख बांटने वाला कोई है, वो ही है, इन्हें भीतर बीच में दिन रात जलते रहते हैं, उनको कोई शांत होना देता, किससे मन की बातें खोल करके न हर से न लक्ष्मण जी से न हनुमान से किसी से नहीं। एक दिन गुरु जी से बोले कि गुरु जी आप ऐसा कीजिए कि एक जगह में काम हो जाता, जगह के लिए आदेश दीजिए, मैं जगह और आप ही जगह कराएं, न कि तुम जब तक जगह करने के लिए योग्य नहीं हो, तो मैं ईश्वर भक्ति की बातें हैं ये बतलाऊंगा, पीछे यज्ञ नहीं कर सकते, इसलिए यदि यज्ञ कर सकते हो सीता जी को बुलाओ,
तुलना हटे के लिए
सीता जी के साथ में यज्ञ होगा, गृहस्थ का अधिकार अकेला नहीं, वो अर्थांगिनी है, जाओ ले आओ, तो ये तो नहीं कर सकता, फिर भी मैं यज्ञ करना चाहता हूं, नहीं कर सकता, सीता जी को नहीं ला सकता, किसी दूसरी स्त्री से शादी कर लो, तुम्हारे पिताजी की 360 रानियां थी, अभी भी तुम चाहो तो हजारों लड़कियां तुमको मिल जाएंगी, तुम शादी कर लो, नहीं ये भी नहीं करना है, हम दूसरी शादी नहीं करना, मैं यज्ञ नहीं कर सकता, नहीं गुरु जी फिर से हमको यज्ञ करो, ऐसा करो कि सोने की सीता की मूर्ति बनाओ, उसकी प्रतिष्ठा की जाए, और वो तुम अपने बाएं तरफ में रख सके कर सकता हूं, तो ऐसा है। तो जब तक यज्ञ करते थे और सोने की इत्यादि यज्ञ तब सीता जी की सोने की मूर्ति बनती, और रामचंद्र भगवान ही जिसकी प्रतिष्ठा कर रहे हैं, वशिष्ठ करा रहे हैं जैसे व्यक्ति, उसमें प्राण का संचार हो जाता है। यदि भक्तों शिव विग्रह को ला करके और उनकी प्रतिष्ठा करती हैं करते हैं, तो वो बातें करती हैं वो मूर्तियां, जैसे सनातन गोस्वामी से बात की और सब देखा जाता है शास्त्रों में, यहाँ वृंदावन में मदन मोहन का देखा जाता है, गोविंद जी का देखा जाता है, वो चलती हैं करती हैं बात भी करती हैं अपने भक्तों से, तो उनकी वो नहीं चले नहीं होगी, उसमें प्रार्थना सीता जी प्राण आ जाता है। एक समय की बात है, रामचंद्र जी नैमिषारण्य में यज्ञ कर रहे, तो उस समय में सोने की सीता बनाई गई थी, अब इनके बच्चे अभी 9-10 वर्ष के या 11-12 वर्ष के हो गए हैं लोग, वो रामायण को कंठस्थ कर दिया था और नाना प्रकार के स्वर से उसमें मूर्छना स्वर और अवसर स्वर इतना सुंदर गाते थे और बोली भी थी मधुर कि कोई भी सुनकर के मुक्त हो जाए। और रूप कैसा राम का है ना, और सीता जी उनका जैसा रूप। अभी ये बच्चे हैं, राम तो कुछ बड़े हो गए हैं, 11,000 वर्ष होने पर भी रामचंद्र जी की मूछ नहीं आई थी, ये समझो। आजकल को जो भगवान बनते हैं ना वो सभी कुछ सफेद हो जाता है, ऐसे बातें बच जाते हैं, साथ उठ जाते हैं। और रामचंद्र जी कृष्ण जी या भगवान का कोई भी अवतार में मूछ तक रेखा तक नहीं आती, दांत नहीं टूटते, बुढ़ापा का कोई लक्षण नहीं होता, केश नहीं पकते। 11,000 वर्ष की उम्र होने पर भी रामचंद्र जी कैसे लगते थे, मानो 12, 13, 14 वर्ष के ही अभी सुकुमार। और ये उसे भी कम उम्र, इसमें गला में माधुरी है और सुंदर रूप मधुर रूप सबके लिए आ रहा है। और ऐसा सुंदर कीर्तन करे रामायण का वाल्मीकि का। अभी आप लोग देखते हैं ना कभी कभी राग इत्यादि लेकर के तुलसी की रामायण की का गान होता है, कितना सुंदर होता है। तो इस अर्थ से कीर्तन कर रहे थे और बाई चांस वो राम की सभा में पहुंचे। रामचंद्र जी का सगरे का यज्ञ हो गया था, सब लोग विश्राम कर रहे थे खा पी करके, दोपहर का समय, और उसी समय में कथा वाचक कथा पाते थे, किंतु इसका कीर्तन सुन करके रामायण का सब लोगों ने वो सब बंद कर दिया। रामचंद्र जी को पता लगा, वो सारी सभा बैठी और ये दोनों वीणा चंद्र पर खड़े होकर के राग आलाप करके ऐसा कीर्तन किया, विशेष करके सीता जी का वनवास का। वो नहीं जानते थे ये राम हमारे पिता है और सीता जी, वही सीता जी मेरी मैया है, वो मैया जानते थे और वाल्मीकि को गुरु जानते थे और कुछ नहीं जानते। तो वो रामायण पाठ जब करते तो राम के आंखों में आंसू आ जाते, कौशल्या माता कैकेयी सुमित्रा सभी की आंखों में आंसू, लक्ष्मण हनुमान सब रोने लगते। एक दिन की बात है, रामायण कहां तक शुरू हो, ये लंका कांड इत्यादि हो गया, सीता जी का वो जो वो था वो हो गया था और सीता जी का केवल वनवास का बाकी था। तो बच्चे गा रहे हैं, सभी लोग रो रहे हैं। राम ने कहा कि बड़े सुंदर हैं, लक्ष्मण जरा जाओ पूछो तो ये किसके बेटे हैं, जरा पूछो उनका परिचय क्या है। कौशिक क्या ने देखा, ये तो राम के समान जिसका रूप है, ऐसे ही लगते हैं जैसे राम छोटी अवस्था में था, कई कई समस्या सभी लोग आए, किंतु किसी को कुछ नहीं था, वो ये नहीं था। किंतु राम ने लक्ष्मण जी को भेजा और सोने के थाल में अशक्तियां मोतियां जवाहरात ये सब बात करके उनको दिया, इन बच्चों को पुरस्कार दो और इनका परिचय पूछ करके आओ, इनके माता पिता कौन है। लक्ष्मण जी गए पूछने के लिए, तो पहले तो उन्होंने उपहार देना चाहा सोने वाला सोने के साथ, उन्होंने बताया कि सोने से हमें क्या मतलब है, हम गुरु के आश्रम में रहते हैं, वहीं पर केले और फल मूल खाते हैं, वहां पर नदी है बहुत ही, उसी से हम पानी पी लेते हैं और गुरु जी के बगीचे में वो केले के लिए हैं, उसी से अपना कपड़ा बना लेते हैं छाल से और हम पहन लेते हैं, हमें इस सबसे कोई भी मतलब नहीं, लौटा दिया नहीं दिया। जब लौटा दिया तो इनकी सरकार बढ़ गई कि देखो तो इसको धन संपत्ति में कोई भी लालच नहीं है। तो फिर उन्होंने पूछा, बेटे ये बताओ तुम्हारे माता पिता का नाम क्या है, परिचय तुम्हारा। कहा जी आप तो शास्त्र क्या है, साधु संतों का ब्रह्मचारियों का पिता माता का नाम नहीं पूछना चाहिए, क्या पूछना चाहिए, तुम्हारे गुरु कौन है, ऐसे गुरुनिष्ठा होने चाहिए, गुरुनिष्ठा इज द बैक बोन ऑफ भक्ति एंड ऑल काइंड ऑफ सक्सेस। जिसको गुरु नहीं है और जिसको गुरुनिष्ठा नहीं है उसका जीवन बेकार का है, और वो भी सदगुरु उसका होना चाहिए सब, अन्यथा जीवन सफल नहीं हो सकता, मार्गदर्शन नहीं हो सकता। संसार का ये जो संसारी गुरु है वो कुछ भी फला नहीं कर सकते, कुछ भी फला नहीं, जो आत्मदर्शन करा करके भगवान के चरणों में प्रेम ला दे वो यथार्थ। यदि गुरु किसी ब्रह्मचारी का भी ये नहीं पूछना चाहिए, और ब्रह्मचारी भी यही कहेगा हमारे गुरु का ये नाम है, हमारा कोई संसारिक परिचय नहीं। और ब्रह्मचारी कहता है अपने कृपाश्रम का वो बतलाता है, समझो जब भी ब्रह्मचारी थे। जब लक्ष्मण जी से कहा शास्त्र के अनुसार आप तो शास्त्र जानते हैं, फिर भी ऐसा पूछते हैं, हमारे से बस गुरु वाल्मीकि के हैं, मैं यही जानता। इसका फिर मैं अपना परिचय पूछ नहीं किया, बड़े लज्जित हुए। शाम बदलते घर में आज बहुत देर हो गई, इन सबके कारण मैया उनके लिए प्रतीक्षा कर रही है पिताजी वाल्मीकि के आश्रम। उस समय में लक्ष्मण जब आए दोनों को अपनी गोदी में बैठा लिया, बोली बेटी आज बहुत विलंब है तुम, आप तुम लोग पैसे आज तक से इतनी दूर देरी नहीं होती थी, विलंब नहीं होता था, कैसे विलंब हो गया। भैया एक बड़ी विचित्र बात हमने देखी, आज हम कोई एक राम राजा हैं अयोध्या के, तो हम आज उनकी सभा में पहुंच गए और उन लोगों ने हमसे रामायण वाल्मीकि का जो हमारे गुरु जी ने लिखा उसको कीर्तन करने के लिए, और हम लोग वहां कीर्तन कर रहे हैं, सारी सभा के लोग रोने लगे। और अंत में हमने एक विचित्र बात देखा, वहां पर एक सोने की मूर्ति थी, वो मूर्ति कैसी थी, ठीक तुम होती है वो मूर्ति नहीं, तुम हमको मूर्ति में लेकर के बैठी और वो चुपचाप बस बोलना बाकी और बाकी सब तुम्हारे, ये सुनते ही बस सीताजी विलाप करने रोने लगी। आवेग जो आया जय राम ने हमको नहीं छोड़ा, एक राजा ने रानी को छोड़ा, राम ने अभी भी हमको अपने हृदय नहीं रखा है, बड़ी जोर से रोने वे आपके आंसू उनको पूछने लगे, भैया क्यों रोती है सीताजी, क्या होती है कि वही हमारे पति हैं वही तो हमको छोड़ दिए हैं, किंतु राम उनकी पूजा करते हैं उस सीताजी की। सब सुन करके सीताजी एक समय विवश हो गए, पीछे से उनका मिलन हुआ। हमारा ये तात्पर्य है जो रामचंद्र जी ने जो कहा वहां नवदीप के स्थान में पंचवटी में अभी हम तुम्हें छोड़ देंगे, तो सीताजी पूछ रही है बिना कारण हमको क्यों छोड़ देंगे और आप मेरी पूजा करेंगे, तो यही तो बात है। तो वो प्रेम के दो पहलू होते हैं, क्या होता है एक विरह और एक होता है मिलन। पहले मिलन होगा, मिलन में सेवा होगी आराध्य देव की, और किसी कारण से कुछ समय के लिए यदि भी छूट गए तो उसको जिसको जितना अधिक विरह होगा उसके लिए समझो ये प्रेम वहां पर उतना अधिक है। राधा जी को जितना कृष्ण के लिए विरह होगा जब मथुरा चले जाएंगे द्वारका, राधा जी को भी होगा, मैया यशोदा को भी होगा, नंद बाबा भी होगा, सखाओं को भी होगा, ललता विशाखा जी को भी होगा, कि राधा जी जैसा होगा कि नहीं, नहीं होगा। वो राधा जी को समझाएंगी कितना मत रहो, धैर्य धारण करो, ये सम क्यों धारण, वो क्यों समझाएंगी, उनका विरह उतना नहीं है जो वो पागल हो गई, सीताजी को भी गिरा था किंतु राजा जी जैसा गिरा नहीं था, जिसको मिलन में जितना किसकी सेवा करती है मिलन में आनंद है उसको उतना ही विरह में वो उतना ही दुख होगा। तो यही रामचंद्र जी सीताजी को बतला रहे हैं, देखो प्रेम के दो पहलू हैं मिलन और विरह, प्रलंब और संभव, ये दो बात है। ये दोनों नहीं जाने से जिसको विरह नहीं कभी कभी होगा तो वो फिर मिलन में जो आनंद है उसकी अनुभूति नहीं होगी, समझ रहे हैं कुछ। विरह में जैसे जशोदा मैया हैं उनकी गोदी में सब समय खेल रहे हैं कृष्ण, कुछ कुछ वो निश्चिंत हो गई है और उतना आई और उनको दूध पिलाने के बहाने में आकाश मार्ग में लेकर के चली गई, और इसके बाद में किस प्रकार से उतना के हाथों से जब रक्षा हुई तो अब उसको छोड़ेंगे नहीं, दिन रात उसको बच्चे को साथ में लेकर के रखें। इस तरह से जितनी लीलाएं हुई हैं उनकी उसमें प्रेम का नवीनीकरण होता जाता है। कैसे? कृष्ण ऐसे मालूम होता है कि अब मरे अब मरे, अगासुर ने उनको निकल लिया, इसके बाद में क्या हुआ, ये वृक्षों को नीचे कृष्ण वो ओखल लेकर के जा रहे हैं, आ दोनों पेड़ गिर गया। जब उनके ऊपर में गिर जाते तो क्या होता, अभी तक केवल अभी कितने वर्ष के थे, वर्ष भी नहीं। तो इस तरह से प्रेम का नवीन कर्म होता है। कृष्ण मथुरा चले गए, ये किस लिए? इसके बाद में जब मिलन होगा उनका आनंद बढ़ेगा, इसलिए मैंने तुमको छोड़ दूंगा और तुम्हारी मुख्य पूजा करूं, और इसके बदले में तुम एक मेरा अभी अवतार होगा चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और उसमें क्या होगा, मैं संसार को छोड़कर के संन्यास लेकर के चला जाऊंगा, और तुम मेरी मूर्ति बना करके घर में तुम्हारा नाम होगा विष्णु प्रिया, और तुम मेरी मूर्ति को पूजेगी। जब महाप्रभु की संन्यास ले लिया, कृष्ण ही है किंतु अभी रूप थोड़ा सा बदल गया है, राधा जी का भाव और कांति लेकर के आए। जब वो चले गए जगन्नाथपुरी में तो ये क्या करती, उनकी मूर्ति बनाकर और उनकी पूजा करके उनसे बात करती और कैसे जीवन निर्वाह करती, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम, चावल की शरक देती और उसमें एक कण ले लेती एक, और ये उच्चारण करके अपने आंखों के आंसुओं से धो करके रखती। इस तरह से दो पाप तक जितना नाम करती उतने चावल हो जाते, बस उसी की रसोई बनती थोड़ा सा, और रसोई देने के बाद में सची मैया उसको भोग देती, और सची मैया के भोजन कर लेने के बाद में और तब जो बच जाता उसको वो ग्रहण कर कितना लेती, किसी प्रकार से जीवन निर्वाह करती और दिन रात तिरंग में तड़पती। कहते इस तरह से तू मेरी पूजा करेगी और मैं सन्यासी होकर के पागल होकर के और मैं कृष्ण कृष्ण करूंगा, इसलिए और उसी प्रेम में सारे संसार को डुबा दूंगा। जो छोटे भक्त के जीव हैं, यहां तक सिंह भालू जंगल में रहने वाले हैं, यहां तक कि कोई भी व्यक्ति है हमारे मुख से नाम सुन करके वो प्रेम में पागल होते हैं। इस तरह से संसार में सारे जगह में महाप्रभु जी ने संन्यास लेकर के प्रेम धर्म का और नाम का उन्हीं के आज कृपा से हम लोग यहां पर नाम कर रहे हैं, इस प्रेम को समझ रहे हैं और उन्हीं के लाइन में चल रहे हैं। तो आप लोग भी यदि इस जीवन में ये हो, हाँ है इतने जन्म गए और भगवान का दर्शन नहीं हुआ, संतों की कृपा नहीं हुई, हमें इसकी विरह की अनुभूति नहीं हुई, कैसे भगवान का मिलेंगे, जो हम साधन भजन कर रहे हैं इससे नहीं मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? जैसे मछली को पानी से निकाल दो और छत पर छत पर छत पर छत, ऐसे ही भगवान के लिए विकलता आएगी साधन भजन करते करते, श्रद्धा निष्ठा रुचि त्यागना, जब ऐसी स्थिति आएगी तब फिर जाकर के कहीं उनका प्रेम मिलेगा और उनको हम प्राप्त करेंगे। इसलिए एक चीज रखिए याद, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवत भजन भगवत भक्ति लाभ का, यह कहते शुद्ध वैष्णव की कृपा से या भक्तों की कृपा से या उनमें जो प्रधान है गुरु की कृपा से, इसलिए सब जीवन का निर्वाह जैसे तैसे करो, किंतु उद्देश्य ये रहे कि भगवान का भजन। एक व्यक्ति भगवान का नाम कर रहा था गुरु की सेवा से, उनकी कथाओं को सुनकर के धीरे धीरे उसको संसार के प्रति विरक्ति कुछ आई, ये बुरा है कि ठीक है, किसी लड़की को भी भगवान की कथा सुनते सुनते मीरा बी जैसी विरक्ति हो जाए, ये गलत है कि ठीक है? भगवान का भजन करेगा नाम करेगा या करेगी और विरक्ति संसार से ना आए तो क्या समझो अभी भजन ये ठीक नहीं। आप किसी को ऐसा यदि हो गया तो क्या समझो, सारा शास्त्र वेद उपनिषद शास्त्र रामायण पुराण सभी ये कहें ये ठीक है, कृष्ण प्रेम में पागल कोई हो गया मिला जैसी, मिला ने बहुत खराब काम किया, क्या अपने पति की सेवा की नहीं है? गंदा काम नहीं हुआ क्यों किया? पति को छोड़कर के क्यों आए? पति को छोड़कर के भगवान का भजन होता है? हरे कृष्ण ही तो पति है। आज संतानों से तुलसीदास जी खराब काम किया ना अच्छा काम किया, भगवान का भजन करते घर को छोड़ दिया। जब मैं घर छोड़ा तो हमारे गांव वाले घर वाले जितने थे वहां के कुत्ते भी हमको दे करके भागते थे, घर तू ये घर कर भजन हो जाएगा। माता पिता को छोड़ करके विवाहिता स्त्री और बच्चों को बिल मिलाते हुए छोड़ करके जाए तुम्हारा भजन होगा। सभी लोग उनके कहने का कुछ तात्पर्य कुछ है, उनकी बातें ठीक है कि जो शास्त्र कहते हैं भागवत पुराण रामायण वेद परिषद कहते हैं वो ठीक है, हमारे जो ऋषि महर्षि कहते हैं वो ठीक है, सब ठीक है। यदि किसी को इस जीवन में सुखदेव गोस्वामी जैसा प्रेम हो जाए, नारद जी जैसा प्रेम हो जाए और संसार को छोड़ करके भगवान का भजन करने लगे, तुम्हारी संतानों में से कोई किसी का संतान भगवान का भजन हो करके प्रेम में अब जो छोड़ करके तो क्या करेंगे हम? आदर करेंगे ना उसको मारेंगे पीटेंगे? बुरा काम कर रहा है ना अच्छा कर रहा है? और जो इतना समझ करके भी यदि उसके प्रति यदि उसके समान भले ना तू जैसा व्यवहार करे तो कम सौभाग्यवान जी उसको कह रहा भगवान का भजन करा पर आगे नहीं आए और सब समय प्रसन्न रहे, जात्मा आत्मा भी प्रसन्न रहेगी। इसलिए संसार का ये मूल तात्पर्य भगवान ने मनुष्य से दिया है, इसलिए भगवान का भजन करो और तब से कहते जे दूसरे जन्म में ऐसी भक्ति हो जाए। इसलिए भक्तों का निरादर मत करो किसी भी स्थिति में, ये जीवन का एक न एक दिन संतान छोड़ना पड़ेगा। याद रखो अपने बच्चे को स्त्री को सबको और स्त्री को भी अपने पति और बच्चों को भी छोड़ करके खाली हाथ, खाली हाथ ये शरीर भी छूट जाएगा, याद रखो। इसलिए भगवान अपने जीविका से निर्वाह के लिए जो कुछ उचित है करो, सबसे प्रीति रखो क्योंकि अपन प्रेम करो और जो इस प्रेम को देता है ऐसी वृत्ति को लगा देता है उसके प्रति निष्ठा वही तुम्हारा माता पिता यथार्थ बंधु है, तो संसार में सुखी रहो। आज भी समाप्त कर हम विराट हो जाएगी, इसलिए सब हम लोग कहा रहेंगे करोड़ बाद में रहेंगे, आप लोग आएंगे तो हरि के साथ सुनाएंगे और आप लोग भी जो अभी हरि नाम नहीं लिया है जल्दी से हरि नाम लेकर के सब अपने गले में तुलसी माला लेकर के प्याज राशन मांस मछली छोड़ करके भगवान का भजन और जी जीवन में भी सुखी रहो।
बता दो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम
को ध्यान रहना चाहिए। जैसे बहुत से लोग कहते हैं ये भगवान में है, बहुत से लोग कहते हैं नाम मैं नहीं लेना चाहता, बहुत से भगवान आज संसार में बड़ी उनकी प्रशंसा है। ऐसे कोई भगवान यदि दिल्ली में आ जाए ना तो पुथल पुथल हो जाती है, सारी मिनिस्ट्री उसमें दौड़ जाती है, वाजपेयी तक भी पहुंच जाते हैं अपने को भगवान कहने वाले। किंतु भगवान यदि 11,000 वर्ष तक रहें, 20,000 वर्ष तक रहें, तो उनको रेख नहीं आएगी, सब समय किशोर मूर्ति रहती है, दांत नहीं टूटता और किशोर जैसे दिखते हैं। ये भगवान तो बूढ़े हो जाते हैं, दांत भी टूट जाते हैं, फिर मर भी जाते हैं। इसलिए जो लगत में जो ये कहते हैं ये मैं भगवान हूं, खबरदार ऐसे भगवानों से सावधान, जो गिरिराज को उठा सकता। इधर में आ जाइए, जगह सामने ढोलकी के पास में आ, आपकी हारमोनियम नहीं आई ठीक, तो ऐसे भगवान से सावधान रहो। जो गीता नहीं मानते, भागवत नहीं मानते, जो गीता भागवत नहीं मानते, रामायण नहीं मानते, क्या हो गया? तो जो जानते हैं वो करे, वो कैसे करेंगे? उधर में रख दिया है तो फिर छोड़, तो ऐसे भगवान को दूर से नमस्कार करो। कृष्ण ससरी किशोर जैसी मूर्ति में ही अपने धाम को चले गए, राम 11,000 वर्ष तक रहे और मुख की रेख नहीं आई, और अपने धाम में सारी अयोध्या वासियों को लेकर के चले गए, और क्या क्या किया? कृष्ण गोवर्धन को धारण किया, 20,000 कर दिया, इन भगवानों को जरा 20 दो तो आग पर बैठा दो तो क्या करते हैं? इसलिए लोग कहते हैं अंधाधुंध भेड़ के पीछे भेड़ जैसे मत दौड़। जिनका कोई वेदों से, शास्त्रों से, भागवत से, गीता से संबंध नहीं है, वो लाख कहें भगवान मत मान, उस धर्म के पास में जाओ मत जाओ। अभी दिल्ली में बड़ी भीड़ लग रही है, आसपास में हजारों स्वयं सेवक लगे हुए हैं, पानी पिलाया जा रहा है, बड़ी सेवा हो रही है, किंतु उस धर्म से, भगवत धर्म का, या भगवान से, या कृष्ण से, या राम से कोई संबंध नहीं है। मत पीछे दौड़ो। भेड़िया धसान जानती हो आप लोग? जानते हैं भेड़िया धसान? वो भेड़े मान ले कि 10,000 भेड़े चल रही हैं और एक नदी आ गई तो कोई भी भेड़ नहीं जाएगी, तो जो भेड़ को पालने वाला होता है वो एक भेड़ को उठा करके और बड़ी जोर से फेंक देता है उधर में, तो बैबे करती ही उधर में चली, अब लाखों भेड़े उसमें कूद पड़ती है और चलती है। इधर में आ जाइए, इधर में जगह है, भीतर में बहुत जगह है, उनको डायरेक्शन वहीं रहिए और लोगों को डायरेक्शन दीजिए, उधर से यहां तो चले आए, हाँ भीतर में बहुत जगह है। तो अंधाधुंध आंख बंद करके चल रहे हैं उसके पीछे में नहीं चलना चाहिए, विचार करके देखना चाहिए हमारी संस्कृति के अनुकूल है कि नहीं। कुछ लोग का ऐसा धर्म है जो राधा जी के नाम पर, कृष्ण के नाम पर रख दिया है, किंतु राधा कृष्ण से कोई संबंध ही नहीं है, आप लोग समझिए इन चीजों को, खबरदार उनसे कोई संपर्क मत, वो हमारे देश की संस्कृति ही नहीं है, हमारे देश की संस्कृति से बहुत अलग है। अतः राधा इत्यादि, राधा का नाथ स्वामी इत्यादि रख देते हैं, इन लोगों से सावधान रहेंगे। हमारी संस्कृति और सभ्यता विश्व में सबसे पुरानी है, बहुत, जिसमें नारद जैसे ऋषि, ब्रह्मा जैसे, शंकर जैसे, वैष्णव लोग, अनुभवी सब विद्वान और ये सब हो गए हैं, हम उसके लाइन में हैं, उस लाइन में रहना भारतीय संस्कृति, वो सब भारतीय संस्कृति नहीं है। राम आए एक, कृष्ण आए एक, और संसार में क्या नहीं कर दिया, इस तरह से समझिए इस विषय को। जब तक नहीं समझेंगे अंधाधुन आप लोग भी दौड़ पड़ेंगे उधर। पहले ये देखेंगे ये गीता भागवत रामायण पुराण वेद मानते हैं कि नहीं, तो उसी तक कह देंगे हम नहीं मानते। अच्छा मंदिरों में ठाकुर जी को राधा कृष्ण को मंदिर में जो है हम मानते हैं कि नहीं, तो कह देंगे नहीं। समझिए कि हमारे भारतीय संस्कृति जो भगवान के शिव विग्रह को मूर्ति को नहीं मानते वो हमारे भारतीय संस्कृति के नहीं है। इन सब चीजों को समझें और वैसे ही आ सकता है। शुद्ध भक्ति भगवान का नाम नारद जी से देखिए आरंभ हुआ, ब्रह्मा जी से आरंभ हुआ, चित्रकेतु महाराज जी और श्रीमद्भागवत में इसका विवरण है, वेदांत में इसका विवरण है, उपनिषदों में इस सबका विवरण है। इसलिए जो इसको मानता है बस उसके साथ यमनीय लोगों से दूर रहिए। और ये भले ही हरिनाम दीक्षा नहीं है तभी भगवान का नाम लीजिए, बल्कि गणेश की पूजा भी अच्छी है उन लोगों से कोटि गुण अच्छी है। शंकर जी की आराधना गणेश जी की भी आराधना उन लोगों से कोटि गुण अच्छी है, क्योंकि वो वैदिक संस्कृति है, वो एक श्रेणी में आती है, उनको सबको सम्मान देकर के चलना चाहिए। ये लोग उनका भी आदर नहीं करते। जिस संस्कृति में माता पिता का आदर की बात नहीं उसको नहीं मानना चाहिए, ये सब को लेकर के चलना चाहिए। रामचंद्र जी दो मिनट कुछ बोलिए तो ऐसा बने कि उसका प्रचार भी करे, ये भी एक भक्ति है। गीता में कहा गया, कृष्ण ने सुनाया और सुना करके कहा इसको सुन करके इसका प्रचार करो, ये भी एक भक्ति है। तो जो अच्छी चीज है, आजकल नकली चीजों का प्रचार देखो कितना, राजनीति इतनी गंदी, इतनी गंदी जिसका हिसाब नहीं, और उसमें करोड़ों लोग लगे हुए हैं राजनीति के प्रचार में झूठ बेकार का, और हम अच्छी चीजों का प्रचार हम लोग भी करें, चाहे महिला भक्त हो और चाहे पुरुष भक्त हो, इसको समझिए और जितना समझ रहे हैं उसको दूसरों को भी दीजिए, उनकी सहायता भी, तब ये भक्ति बहुत जल्दी बढ़ेगी। ऐसा नहीं कि अपने ही बस रख लिया, उनको जितना जानते हैं भाई भगवान का भजन कर, इसी से हमें आप सुखी हो सकते हैं। भाई ये शरीर आत्मा नहीं है, आत्मा अंदर है, भगवान सर्वत्र है, मुझको देख नहीं पाते हैं, अभी भगवान तो है ही है, सारा विश्व का संचालन करते हैं, बड़े कृपालु हैं, आप उनका शरण, उनको रोज प्रार्थना की, इतना तो कर सकते हैं ना, इसी में शांति और सुख है। जो भगवान का भजन नहीं करते कभी भी सुखी शांति नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। भगवान का एक बार कृष्ण नाम, राम नाम, कोई भी नाम भगवान का है, लाखों कोटि गोविंद नाम है, दामोदर नाम है, इनमें कोई भी नाम हो आप सवेरे उठ कर बस इसी से ही आपका कल्याण हो जाए। अजामिल ने ऐसा किया था, प्रहलाद महाराज जी ने ऐसा किया था, अभी महाप्रभु जी के लीला में महाप्रभु जी ने बाघ और सिंहों को भी हरिनाम करा दिया, उनको भी बदल दिया। इतना तो सहज रूप में कोई भी कह सकता है, ऐसे कहेंगे इसका ऐसे ही प्रचार। अभी हमारे श्रीमान भक्ति वेदांत माधव महाराज जी कुछ हरि कथा आप लोगों के सामने कुछ बोले, सहज रूप में सरल रूप में जो साधारण आदमी समझ सके, भक्ति का के संबंध में या जैसे लोगों का कल्याण हो उसके संबंध में बोले। वहां पर ऐसा सुंदर क्षेत्र बनाया कि मैं वहां जाकर के खूब प्रचार कर रहा अभी, बहुत हरी कथा भी जानते हैं, वहां पर प्रवचन देते थे जैसे रामचंद्र इधर उधर देते हैं, और बहुत योग्य व्यक्ति। मैं चाहता हूं कि हमारे संपर्क में जो ऐसे ही बने और सर्वत्र जो जहां है वहीं से प्रचार करे भगवान की भक्ति। दो शब्द बोलिए तो कैसे उन लोगों को बोलते थे जैसे वो आकर्षित हो, सब लोग ऐसा ही प्रचार करें और भजन भी कीजिए और बोलिए भी। चलो आ जाओ। रखने वाले, इसका पालन पोषण करने वाले और इसका विनाश करने वाले सबके जो मालिकों के भी जो मालिक हैं वो कृष्णचंद्र हैं, यही भगवान हैं। इन्हीं से ही सब जितने अवतार निकले, तो इन भगवान के प्रति यदि आपकी सेवा की वासना होता तो उससे वो भक्ति कहेंगे तो नहीं कहेंगे। कृष्ण के प्रति होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? हमारे तन की, मन की, वचन की, भावों की जितनी चेष्टाएं हैं कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए हो। फिर से समझो, हमारे तन की, मन की और वचन, और वचन से भी ऊपर भावों की जितनी भी चेष्टाएं होती हैं निगेटिव रूप में या पॉजिटिव रूप में, वो सबको कृष्ण को प्रसन्न कर देंगे। निगेटिव में क्या, पहले निगेटिव को भी देखना है। ऐसा कोई कार्य न किया जाए जिससे कृष्ण को अप्रसन्नता हो, तो फिर भक्ति नहीं होगी। और दूसरी बात है, ऐसी चेष्टाएं होनी चाहिए जो कृष्ण को प्रसन्न। आप जुआ खेलते हैं, चोरी करते हैं, बेईमानी करते हैं और भगवान का भी नाम करते हैं, तो ये भक्ति होगी नहीं होगी, इस चीज को समझ। इसलिए निगेटिव और अफर्मेटिव दोनों रूप में होना चाहिए। ऐसी कोई चेष्टा न करो तन से, मन से, वचन से, भावना से, जो भक्ति के विपरीत हो, भक्ति के अनुकूल न हो, प्रतिकूल हो। कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए प्रतिकूल न हो। और दूसरी बात, अपने तन मन वचन की सामग्रिक संपूर्ण रूप से ये चेष्टा हो, इससे ये कृष्ण प्रसन्न हो, तो ये भक्ति के। किंतु इसके साथ साथ में कहा गया, किसी प्रकार के भी लौकिक, कोई भी परमार्थिक और लौकिक चेष्टा अपने स्वार्थ के लिए न करो, अन्नाभिलाषिता। अब इसको समझो, हमारे शास्त्रों में ध्रुव जी की कथा बतलाई गई। ध्रुव जी अपने पिताजी के राज्य पर, राजगद्दी पर बैठना चाहते थे, किंतु उसके पिताजी ने गोली नहीं ली और वो रोता हुआ चला गया। मैया ने कहा, इसके लिए क्या रोता है, तुम्हारे प्रभु हैं, कृष्ण तुम्हारे प्रभु हैं, तुम इसकी आराधना करो, उसे सब कुछ हो मिल जाए। रात में ही राज्य छोड़ करके चला गया हरि की आराधना करने के लिए। और साथ ही साथ जब ये संकल्प लिया कि हम उनकी आराधना करेंगे, किंतु जानता तो है नहीं और राज्य चाहता है, तो नारद जी को भगवान ने भेज दिया, मार्गदर्शन करो। ऐसे ही संसार में आप किसी प्रकार से दुखी होंगे और उस सुखी होने के लिए भगवान की कुछ उपासना करना चाहेंगे, तो भगवान कोई गुरु भेज देंगे, यदि आपकी वैसी इच्छा हो, संकल्प ऐसा हो। नारद जी आए, बालक को समझाना चाहिए कि 5 वर्ष की उम्र है, तुम लौट जाओ, कहीं बाघ भालू न खा जाए, लौट जाओ घर में, जीत नहीं करना चाहिए। लेकिन तुम मारे नहीं, तो उसको मंत्र दिया। मंत्र माने क्या, भगवान को मंत्र के रूप में दिया। उसमें इतनी शक्ति होती है यदि सदगुरु कोई मंत्र दे और उसके अनुसार में वो साधन करते, जल्दी बहुत जल्दी वो सफल हो जाता है। अब तपस्या करने लगा, उनको मंत्र दे दिया। पहले महीने में खाना पीना छोड़ दिया, भोजन नहीं किया, केवल जलपान किया, सूखे जो कुछ पत्ते और कुछ फल मिल गए ले लिया। दूसरे महीने में वो छोड़ दिया, केवल पानी पिया, वो भी 10 दिन के अंतर या कितने दिन का, कुछ दिनों के बाद वो भी छोड़ दिया, केवल हवा लिया, और वो हवा को भी छोड़ दिया, एकदम समाधि हो गया। छह महीने ही भगवान की प्राप्ति हुई, वो भगवान ने उसको दर्शन दिया, जाओ तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो, तुम्हारा कल्याण हो। जो भगवान अंतर ध्यान हो गए तो भगवान का दर्शन का ऐसा फल हुआ, अरे हमने क्या किया। चिंतामणि जैसे सभी कुछ हमारी वो पूर्ण कर सकते थे और हमने ये संसार का ये एक वर ले लिया है हमारा जीवन। भगवान ने कहा 36,000 वर्ष तक अपने पिता के ही राजगद्दी नहीं, संपूर्ण विश्व पर तुम शासन करो। मंगा था थोड़ा मिल गया बहुत, किंतु अब वो उसके लिए भी दुखी हो रहा है, जब मैंने क्यों मांगा, ये तो सब एक दिन नष्ट हो जाएगा। इसने जो भगवान का मंत्र जपा, भगवान की सेवा की, आराधना की, किस लिए की, राज्य की लालसा। इसलिए भक्ति जैसा यह दिखता है, भगवान की आराधना की, उनका ध्यान किया, उनका मंत्र जप किया, किंतु ये शुद्ध भक्ति नहीं है। इस चीज को समझिए, ये भक्ति नहीं है, ये तो राज्य अपना मांगा और राज्य उन्होंने दे दिया, इसे भक्ति नहीं। कैसी होनी चाहिए, किसी तरह का लौकिक लाभ स्वार्थ उसमें न हो हमारी भक्ति। और भी हम देखते हैं बहुत लोगों का श्रीमद् भागवत में वर्णन आया है, पुराणों में आया है, ऐसे ही लोगों ने, किसी ने धन के लिए, किसी ने पुत्र के लिए, भगवान की आराधना किंतु पुत्र के लिए, किंतु अंत में पुत्र भी मर गया, नारद ऋषि आए, ज्ञान तत्व उपदेश दिया, अंत में ये शुद्ध भक्ति नहीं है। इसलिए भक्ति को करीब करीब 2-3 भागों में विभाग किया जा सकता है। एक भक्ति है, एक भक्ति का आभास है, जैसे बतलाया ना ध्रुव जी की भक्ति शुद्ध भक्ति नहीं थी, कुछ स्वार्थ के लिए किया। वैसे ही कुछ लोग भगवान की उपासना करते हैं किंतु किस तरह से, जैसे सुंदर गुण है, दयालुता है, परोपकारता है, दीन ही होना है, सहिष्णु बनना है, ये साधारण गुण नहीं है, मन को वशीभूत करना है, कंट्रोल करना है, ये सब गुण है। ये गुण यदि भक्ति के साथ रहे तो भक्ति है, और भक्ति नहीं है और ऐसे ही रहें, सदाचारी रहें, तत्वज्ञानी भी रहें और सब उनमें गुण हो, बड़े सहिष्णु हैं, ये भक्ति नहीं है। भक्ति के साथ रहने पर इसको भक्ति कहते हैं, इसलिए इसको संग सिद्धा भक्ति कहते हैं, ये भी भक्ति का आभास है, ये भक्ति नहीं। शुद्ध भक्ति क्या है, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीलाएं, उनकी महिमा, उनके भक्तों का चरित्र इत्यादि का जो कीर्तन करते हैं, श्रवण करते हैं, स्मरण करते हैं, वंदना, पाद सेवन इत्यादि, ये जो करते हैं ये भक्ति है। किंतु सब कामनाओं को दूर करके ज्ञान और कर्म के द्वारा ही भक्ति मिलती है, इस भाव को भी छोड़ो, और एकमात्र कृष्ण के लिए ही हो, इसलिए इस तरह से यदि करें तो ये भक्ति हो। इस भक्ति को जरा और अच्छी तरह से समझो, भक्ति की बहुत सी अवस्थाएं हैं, जैसे 5 को मान लिया गया, ज्ञानी भक्त, शुद्ध भक्त, प्रेमी भक्त, प्रेम पर भक्त, प्रेमातुर भक्त। ज्ञानी भक्त कौन है, पहले भक्त समझिए, जो तन मन वचन से सब प्रकार से भगवान की सेवा करते हैं, जैसे इस जगत में अम्बरीश महाराज भागवत में दिया गया, साधारण जगत में बहुत कम इसका उदाहरण मिलेगा। अम्बरीश महाराज के पृथ्वी के राजा होते हुए भी अपने हाथों से ठाकुर जी का मंदिर धोते थे, अपने हाथों से पुष्प चयन करके लाते और ठाकुर जी का अर्चन इत्यादि करते। राज्य चलाते थे, उनके राज्य कर्मचारी मंत्री और ब्राह्मणों को रख दिया था, वो करते थे। हम क्या करते हैं, हम नौकर रह करके ठाकुर जी की पूजा करते हैं और नौकरी अपना बिजनेस वाणिज्य सब करते हैं। ये भक्ति का उल्टा हो गया। वो राज्य काल सब कुछ संचालन करते थे ब्राह्मणों के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा, और ठाकुर जी के मंदिर में ठाकुर जी को साष्टांग प्रणाम करना, जीवा के द्वारा भगवान का सब समय कीर्तन, गोविंद दामो दरभाग बेटी, गोविंद दामो दरभाग बेटी, सत्संग जीवा से कीर्तन कर। पेरेंट्स से क्या करते, धाम में जाते, वृंदावन, मथुरा में रहते थे, वृंदावन में आते थे। उनका राज्य उज्जैनी में था, किंतु एक सीट अपना बना रखा था, वहां आते थे, वृंदावन की परिक्रमा करते, धाम की परिक्रमा करते थे, हाथों से वैष्णव की सेवा करते, ठाकुर जी की सारी सेवाएं अपने हाथों से करते, पंखा झलाते, भोजन बनाते, उनकी स्त्री भोजन बनाती, और मस्तिष्क से क्या करते, ठाकुर जी को प्रणाम करते। भगवान का अर्पित ही चीज कोई चीज लेते, दूसरा कोई भी चीज नहीं लेते, भगवान को अर्पित किया उसको ले। वो अमृत से भी बढ़कर के महा महाप्रसाद बन जाता है, उसकी सेवा इस तरह से करते। अपने समस्त चेष्टाओं से भगवान की सेवा करो, ये शुद्ध भक्ति है। ज्ञानी भक्त वो है, भक्त तो है और भगवान का स्वरूप जानता है, जैसे नारद जी हैं, विषम पितामह जी हैं, वो सुखदेव गोस्वामी हैं, सनक सनंदन ऋषि हैं। कृष्ण को देखेंगे ये लोग तो क्या कहेंगे, यशोदा जी की गोदी में बैठे हैं, आज यशोदा जी ने अपनी गोद से कृष्ण को हटा दिया, गंदे कपड़े कर देता है, बहुत उत्पात मचाता है, तुमको गोदी में नहीं लेंगे। और नारद जी देखते हैं जो कृष्ण मचल रहे हैं गोदी में चढ़ने के लिए, रो रहे हैं, और यशोदा मैया क्या कहते, दूरहट दूरहट। नारद जी कहते देखो तो ये परब्रह्म को ऐसा कर रही, उनको आश्चर्य हो रहा है। भीष्म पितामह जी बाणों के साथ में कृष्ण से युद्ध कर रहे हैं, सोचते क्या है, ये परब्रह्म है, ये बाण उनको नहीं लग सकते, उनका चिन्मय शरीर है, इसलिए बाण उनके पास में स्पर्श नहीं कर सकते हैं। प्रहलाद महाराज जी क्या सोचते हैं, प्रहलाद जी देखते हैं कि ये सर्वव्यापी हैं, भगवान हैं, इनको भूख प्यास लगती नहीं है, इनके पैर थकते नहीं है, तो वो क्या सेवा करेंगे, कर सकते हैं कुछ, इनको भूख ही नहीं है, प्यास ही नहीं है, उनकी क्या सेवा करेंगे, नहीं कर सकते। इसलिए ऐसे लोगों को ज्ञानी भक्त कहते हैं। इसलिए हमारे भीष्म पितामह जी कृष्ण से युद्ध किया, सोचा मारते हैं बाण, कहते कि कृष्ण के शरीर में लगेंगे नहीं, ये जो दिख रहा है ये बाण जा रहे हैं, ये सचमुच में उनको प्रवेश नहीं करते हैं, ये कुछ माया का प्रभाव से ऐसा दिखते हैं। इसलिए परम भक्त हैं किंतु ज्ञानी भक्त हैं। अर्जुन ऐसा नहीं कर सकते, हनुमान जी ऐसा नहीं कर सकते, हनुमान क्या करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। सीता जी को रावण चोरी करके ले गया, तो उन्होंने क्या की, एक छलांग मारी और लंका को जला करके अग्नि में भस्मीभूत कर दिया कि लंका को, और सीता जी से कहे, बोले कि हमारी पीठ पर चढ़ो और मैं अभी तुरंत उस पार ले जाऊं। सीता जी ने कहा जी ऐसा बेटा ऐसा मत करो, वो हमारे स्वामी को ही लाओ और वो दंड दे इनको और तब हमको ले चले, हम ऐसे नहीं चले। हनुमान जी ने ऐसा, हनुमान जी क्षण क्षण में राम की सेवा करते हैं, समझते हैं कि हमारे प्रभु को भूख लगती है। कभी कभी ये भी होता है ये भगवान है, किंतु अधिकांश रूप में वो सेवा करते हैं, इनको भूख उनके पैर भी दबा देते हैं, चलते चलते थक जाते हैं, तो युद्ध में थक जाते हैं। उनके लिए परकोटा बना करके अपने पूछ से ही उनकी रक्षक किला बना देते हैं। अब जब जरूरत होती है किसी चीज की, झट उनकी सेवा करते हैं, दिन रात सेवा में जुटे रहते हैं। इस तरह हनुमान जी इनसे बहुत श्रेष्ठ है। प्रहलाद महाराज जी ऐसी सेवा नहीं कर सकते, भीष्म जी नहीं कर सकते, सनक सनंदन नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उनके भक्त जो वो इष्ट देव पूर्ण रूप में ब्रह्म है, उनको भूख नहीं है, प्यास नहीं है, उनको कोई थकावट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो क्या सेवा वो करेंगे। किंतु हनुमान जी का, किंतु हनुमान जी सेवा करने पर भी प्रेमी भक्ति तो है उनमें, प्रेम भक्त है, किंतु राम के पलंग के ऊपर में नहीं बैठ सकते। कोई सुंदर के मिलिए तो वो अपना जूठा राम को नहीं दे सकते, उनको उसके रूप में ग्रहण नहीं कर सकते। और यही पांडव लोगों को देखिए, कृष्ण ने अपनी बहन सुभद्रा जी की शादी अर्जुन से कर दी, उनके साले बन गए, एक साथ में एक पलंग पर सोते हैं, भोजन करते हैं, एक थाल में भोजन करते हैं। और अर्जुन कहेंगे कि हमारा रथ बीच में ले चलो, सेनाओं के बीच में वो ले जाएंगे, जो अर्जुन कहेंगे वही करेंगे। इसलिए उनसे ये श्रेष्ठ है, अपना जूठा भी दे देंगे, किंतु सब समय नहीं। जो ही वो विराट रूप देखेंगे कहे हमने ये जो सखा कहा है ये भूल की है, हे प्रभु आप रक्षा कीजिए, आप जगत के प्रभु हैं, मैं एक तुच्छ जीव हूं, वो सब भक्ति निकल जाएगी उसे। इन्हें कभी कभी ऐसा हो जाता है। और यशोदा मैया को भी स्वरूप दो दो बार तीन तीन बार दिखलाया कृष्ण ने, किंतु उन्होंने देखा इसको किसी ने जादू कर दिया, टोना कर दिया, ये भगवान नहीं, ये साधारण हमारा बालक है। इसलिए उन लोगों का प्रेम इसे बहुत अधिक है। इन चीजों को समझना चाहिए। भक्ति का तत्त्व क्या है कि घर में रहते थे कृष्ण, और बड़े बड़े ब्रह्मर्षि लोग वहां पर जाते थे, द्रौपदी और नारद जी को लीजिए। नारद जी यदि घर में आए तो द्रौपदी क्या करेगी, उनको प्रणाम करके चरणों की धूली लेगी, किंतु नारद जी क्या कहें देखेंगे, ये देखेंगे कृष्ण इसके लिए आते हैं और इसको सखी कहते हैं और जो कुछ कहती है वही मानते हैं, और इनके घरों में रहती हैं और वो रसोई पकाती है, तरह तरह से उनकी सेवा करते हैं, नारद जी कर सकते हैं। इसलिए असल में नारद जी से भी किसी किसी स्थिति में इसकी भक्ति अधिक है। इसलिए पांडवों की बहुत अधिक भक्ति, किंतु पांडव इतने योग्य नहीं हैं जो कृष्ण को ब्रज में भेज दें। भेजेंगे किसको, उद्धव को भेजेंगे। ये उद्धव कृष्ण के मंत्री भी हैं, सेनापति हैं, जनरल हैं, उनके शिष्य भी हैं, परामर्शदाता भी हैं, सब रूप में कृष्ण के बिना ये रह नहीं सकते, इसलिए इनको भेजा। ये जाओ गोपियों को समझाओ, समझाओ माने किस लिए, जाओ जिस स्कूल में मैं प्रेम का पाठ पढ़ाए वहीं पर जाकर के तुम प्रेम का पाठ पढ़ो, और तब फिर आओ तो तुमसे प्रेम की दो चार बातें करेंगे, नहीं तो गोपियों को तुम समझ नहीं सकता, हमारे प्रेम को नहीं समझ सकता। जब उद्धव जी ब्रज में थे, गोपियों से बहुत कुछ सोचा समझा, अंत में जब लौटने लगे तो गोपियों से कहा अब मैं ब्रज में जा रहा हूं, मैं गोपियों से क्या कहूं, कृष्ण से क्या कहूं। जब दो चार बार कहा तो राधिका जी ने कहा देखो ये मत कहना कि ब्रज की गोपियां तुम्हारे विरह में बड़ी तड़प रही हैं और बड़ी दुखी हैं, ये मत कहना, कहना ये गोपियां तुमको भूल गई है और बड़ी सुखी हैं तुमको भूल करके। यदि वो सुनेंगे ये गोपियां तुम्हारे विरह में तड़प करके प्राण छोड़ रही हैं, सारा ब्रज बड़ा दुखी है, तो कृष्ण बड़े दुखी हो जाएंगे और हो सकता है कि अपने शरीर को भी छोड़ दे, जीवन छोड़ दे, इसलिए मत कहना, धीरे धीरे यहाँ की बातें उनको बतलाना, एक बार में मत बतलाना। जैसे पुराना कपड़ा होता है भीज गया तो जो समय ऐठो क्या होगा,
फट
जाएगा। इसलिए कृष्ण का हृदय बड़ा कोमल है, हम लोग जानती हैं, हम लोगों से हृदय से भी कोमल। इसलिए ब्रज दुखी है ये एक बार में मत कहना, धीरे धीरे। और कहना ये गोपियां बड़ी सुखी हैं, आपको भूल चुकी। देखो कृष्ण हम लोगों से लाखों गुना वो अधिक कोमल स्वभाव, तुम नहीं जानते। तब उद्धव जी ने समझा ये कृष्ण संपूर्ण रूप से ब्रज में है, ये मथुरा में और द्वारका में नहीं है। ये सब उनका प्रेम, गोपियों का प्रेम निराला है, कृष्ण उसके प्रसिद्ध है। इसलिए जितनी भी भक्त हैं उन सब में गोपियां सबसे श्रेष्ठ मानी गई। तभी यदि नारद जी, सुखदेव गोस्वामी या कोई साधारण ब्राह्मण भी भक्त वहां पर पहुंच जाए तो सब उनकी चरण की धूली लेंगे। इतना ही नहीं, यशोदा मैया उनकी चरण की धूली लेकर के कृष्ण के शरीर में लगा देंगे, ये हमारे बेटे का कल्याण। ये भक्ति सर्वोत्तम है, शास्त्र अनुमोदित है। श्री चैतन्य महाप्रभु ऐसे प्रेम भक्ति को देने के लिए आए हैं। सबसे पहले ये समझो जो कृष्ण सर्वेश्वरेश्वर हैं, सर्वशक्तिमान हैं। किंतु जब तत्व जब ठीक आ जाए तो रूप गोस्वामी के विचारों के अंदर में आकर के इस चीज को भी भूलना होगा जो कृष्ण भगवान है, तब वो प्रेमा भक्ति ब्रज की भक्ति आएगी। ब्रज का कोई भी व्यक्ति ये नहीं मानता जो कृष्ण भगवान है, नहीं तो उनका ऐसा भक्ति नहीं हो सकता। इसलिए ब्रज की भक्ति सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। आप लोग ऐसे ही भक्ति करने की चेष्टा करें। विदेशों में भी हम लोग प्रचार में जाते हैं, ये सब बातें कहते हैं, लोग बड़े प्रसन्न होते हैं और हजारों की समय लाखों की संख्या में इन चीजों को ग्रहण करते हैं। आप लोग ये शुद्ध भक्ति को ग्रहण करने की चेष्टा, कहां से आरंभ होगी भक्ति? गुरु जी से हरिनाम दीक्षा लेकर भगवान का नाम करो। कलयुग में अर्चन से नहीं होगा, पूजन से नहीं होगा और किसी दूसरे उपाय से नहीं होगा, सरल सहज रूप में जो जहां है अपने स्थान पर भगवान की कथाओं को सुने और भगवान का नाम करें। वो भी नाम कौन सा? हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम। इसमें भगवान कृष्ण ने अपनी सारी शक्ति दे दी है, नाम में सारा रस है। यदि अच्छी तरह से इसको गुरु के अनुगत्य में भजन किया जाए तो इसमें एक एक नाम में भगवान की सारी लीलाएं आपको दिख पड़ेगी। प्रेम में मत हो जाए, जैसे महाप्रभु जी उनके परिकर लोग रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास हरिनाम करते थे, वो दिन रात भूल जाते और उनकी लीलाएं सब उनके हृदय में स्फूर्ति हो जाती, चित्त द्रवित हो जाता, आंखों से आंसुओं की धारा पर पुलक रोमांच हो जाता। आएगी दशा जब जब संसार की सारी रिक्वायरमेंट जब दूर हो जाएगी, अभिलाषाएं दूर हो जाएगी और इस रूप में धीरे धीरे हम भजन करेंगे जरूर होगा, किंतु समय लग सकता है। तो आप लोग भगवान पर विश्वास कीजिए, भक्ति पर विश्वास कीजिए, नाम पर विश्वास कीजिए, हरि कथा सुनिए और इन बातों को दूसरों को भी प्रचार कीजिए। और जो जो नाम इत्यादि है सब लोग कीजिए विश्वास के साथ में। गुरु जो मंत्र देते हैं उसको श्रद्धापूर्वक कीजिए। यदि जिस मंत्र से नारद जी ने दिया, गुरु जी ने थोड़े दिनों में 6 महीने में प्राप्त कर लिया, क्योंकि उस समय शरीर में शक्ति होती थी, बिना खाए पिए रह सकते। कलयुग में तो यह संभव नहीं। इसलिए सरल सहज रूप में भगवान का नाम कीजिए, किंतु सांसारिक अभिलाषाओं को दूर कीजिए, आसक्ति को और मोह को दूर कीजिए धीरे धीरे धीरे, और इसी तरह से नाम कीजिए, बहुत ही जल्दी आप लोगों का कल्याण होगा। आज यही तक मैं डॉक्टर कृष्ण गौर प्रेमानंद लीजिए कृतज्ञ।